हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मिथ सागा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं दुनिया के कोने कोने से कुछ सुनी अनसुनी दिलचस्प मिथिकल कहानियां। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की मिथिकल कहानी जापान के दूसरे मुख्य धर्म शिंतो का एक क्रिएशन मिथ है। अब जिन लोगों को यह नहीं पता कि क्रिएशन मिथ क्या होता है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि क्रिएशन मिथ में मिथिकल या धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह बताया जाता है कि यह दुनिया, धरती और इसमें रहने वाले लोग कैसे एग्जिस्टेंस में आए या फिर उनकी रचना किस तरह से हुई। यह मिथ इसी धर्म के ग्रंथ कोजीकी में दर्ज है। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि शिंतो धर्म में देवताओं को कामी कहा जाता है, और अगर कहानी में कहीं मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो कन्फ्यूज ना होइएगा। जापानीज मैथोलॉजी के अनुसार इज़ानामी और इज़ानागी शिंतो धर्म के मुख्य देवता और एक डिवाइन कपल माने जाते हैं। उनको जापान के 8 मुख्य द्वीपों की रचना का श्रेय दिया जाता है, और यह भी माना जाता है कि शिंतो धर्म के सभी देवताओं का ओरिजिन भी इन्हीं से हुआ है। तो कहानी के अनुसार दुनिया की रचना से पहले सब कुछ निराकार था, और पहले 3 देवता ही एग्जिस्टेंस में थे। आगे चलकर इन्हीं से देवी देवताओं की 7 पीढ़ियों का जन्म हुआ, जिनकी 7वीं पीढ़ी में देवी और देवता इज़ानामी और इज़ानागी शामिल थे। अब देवताओं की पुरानी पीढ़ियों ने इन्हें एक मैजिकल स्पीयर या भाला देते हुए द्वीपों की रचना करने का काम सौंपा। आदेश के अनुसार दोनों काम में लग गए और स्वर्ग और धरती के बीच पर तैरते हुए पुल पर से भाले को समुद्र में डाला और थोड़ी हलचल पैदा की। जब उन्होंने भाले को बाहर निकाला तो उसमें से टपकी पहली बूंद ने एक द्वीप की रचना की, जिसे बाद में ओनोगोरो नाम दिया गया। इस द्वीप पर इज़ानामी और इज़ानागी ने अपने लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसमें एक बड़ा सा स्तंभ था जो स्वर्ग तक जाता था। अब जब दोनों के पास घर था तो उन्होंने अपना परिवार बनाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने वहां शादी की एक रस्म की, जिसके अकॉर्डिंग दोनों को एक स्तंभ के चारों ओर ओपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए चक्कर लगाना था। इस रस्म में एक शर्त यह थी कि चक्कर पूरा हो जाने के बाद केवल इज़ानागी को बात करनी थी और उसी अनुसार इज़ानामी को उसका जवाब देना था। पर इसके उलट पहले गलती से इज़ानामी ने बात की और रस्म ठीक तरह से ना हो पाई। इस बात का पता उन्हें तब चला जब उनके पहले बच्चे ने जन्म लिया, जो कि बिना हड्डियों के पैदा हुआ और एक जोंक की तरह था। इससे निराश इज़ानामी और इज़ानागी ने बच्चे को एक नाव में डालकर कहीं दूर धकेल दिया। ऐसे ही कुछ कोशिशों के बाद जब निराशा ही हाथ लगी तो आखिरकार उन्होंने अपने पूर्वज देवता से इसका कारण पूछा। अपनी गलती को जानने के बाद फिर उन्होंने उसी रिचुअल को सही ढंग से किया और कई सारे द्वीपों या कहे तो देवताओं को जन्म दिया। इनमें आवाजी, शिकुकू, ओकिकायुशु और सबसे बड़ा होंशु नामक द्वीप शामिल है। कहा जाता है कि इसके अलावा भी 800 से ज्यादा कामी या देवता ऐसे थे जिन्हें इज़ानामी और इज़ानागी ने जन्म दिया। इनमें मेनली पहाड़ों के, समुद्र के और पेड़ों के देवता शामिल हैं। अब कुछ समय के अंतराल में एक दिन इज़ानामी कगुशी, जो कि आग का देवता था, उसे जन्म दे रही थी तो पूरी तरह से झुलस गई और अंततः उसकी मौत हो गई। अब इज़ानागी अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, जिसके कारण इस घटना ने उसे दुख और कुछ हद तक गुस्से से भर दिया। गुस्सा इसलिए क्योंकि इज़ानामी की मौत बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी और इज़ानागी ने कगुशी को ही उसकी मौत का जिम्मेवार माना। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी तलवार से कगुशी का गला काट दिया। इस सब घटनाक्रम के दौरान तलवार पर लगे खून और इज़ानागी के आंसुओं से भी काफी देवताओं का जन्म हुआ। अब इसमें कोई शक नहीं था कि इज़ानागी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसी के चलते अपनी पत्नी को दोबारा पाने की चाह उसे अंडरवर्ल्ड के दरवाजे तक ले गई, जो कि मरहूमों की दुनिया थी। अंडरवर्ल्ड पहुंचने पर इज़ानागी इज़ानामी से मिला और उसने उसे अपने साथ वापस चलने को कहा। इस समय वह एकदम अंधेरे में थे और कोई भी एक दूसरे को ठीक ढंग से देख नहीं पा रहा था। इज़ानागी के लाख कहने पर इज़ानामी वापस चलने को तैयार हो गई, लेकिन इस शर्त पर कि इज़ानागी को उसकी ओर देखना नहीं है और वहीं दरवाजे पर उसका इंतजार करना है जब तक कि वह अंदर देवताओं से इजाजत लेकर वापस नहीं आ जाती। इज़ानागी के हाँ कहने पर इज़ानामी अंडरवर्ल्ड में आगे बढ़ गई। जब सारा दिन बीत जाने पर भी इज़ानामी वापस न आई तो इज़ानागी का सब्र जवाब दे गया। उसने उस समय अपने कंघी के एक सिरे को जलाया और उसी की रोशनी में अंदर दाखिल हो गया। कुछ ही दूर जाने पर उसे अपनी पत्नी दिखाई दी और इस बार रोशनी में वह उसे अच्छी तरह से देख पा रहा था, जिससे वह पूरी तरह से घबरा गया। अब इज़ानामी का शरीर सिर्फ एक लाश बनकर रह गया था, जिसे जगह जगह कीड़े खा रहे थे। इसी कहानी के एक और वर्जन में यह भी कहा जाता है क्योंकि इज़ानामी ने अंडरवर्ल्ड का खाना खा लिया था, इसी कारण से अब उसे अनंत काल तक वहीं रहना था। इज़ानामी की हालत देखकर इज़ानागी का इरादा बदल गया और वह बाहर की तरफ भागा। उसे जाते देख पहले इज़ानामी ने खुद उसका पीछा किया और फिर अंडरवर्ल्ड के दैत्यों को उसके पीछे भेजा, लेकिन किसी तरह इज़ानागी वहां से बाहर आने में कामयाब हो गया और अंडरवर्ल्ड की एंटिटीज और इज़ानामी बाहर ना आ सके, इसलिए उसने अंडरवर्ल्ड के दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक दिया। कई और वर्जन में यह भी कहा गया है कि इससे गुस्साई इज़ानामी ने यह कर्स या श्राप दिया कि हर दिन 1000 लोगों को वह मौत के घाट उतारेगी। अब धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए इज़ानागी ने यह वचन रखा कि अब से हर दिन 1500 लोग जन्म लेंगे। खैर, अंडरवर्ल्ड से बाहर आने पर वहां की अशुद्धियों को धोने के लिए इज़ानागी वोटो नदी पे हाथ मुंह धोने गया। इसी दौरान जब उसने अपनी बाईं आंख धोई तो उससे चांद के देवता, दाईं आंख से तूफान के देवता और सांस से हवा के देवता का जन्म हुआ। अब इज़ानागी यह जान चुका था कि वह अपनी पत्नी को उसी पुराने रूप में नहीं पा सकता, इसी कारण वह वापस अपनी दुनिया में लौट गया। इज़ानामी अंडरवर्ल्ड में ही रह गई और तब से उसे मौत की देवी या गॉडेस ऑफ डेथ के रूप में भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, यह तो थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।